अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुमुल्लज़ीना कफरू, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया। वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका। वल हज्जा, और हदी के जानवरों को, माकूफन अय्यबलुगा महिल्लहु, इनकी कुर्बानगाह तक पहुंचने से रोके रखा। वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउ मोमिनात, और अगर मक्का में कुछ मर्द मोमिन और मोमिन औरतें न होती, कौन से वाले, लम तालमूहुम, जिनको तुम नहीं जानते, अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरी इल्मिन, और अगर ये खतरा न होता कि जंग की सूरत में तुम इन्हें पामाल कर दोगे, फिर इनकी वजह से तुम्हें नादानिस्ता कोई पशिमानी लाहक हो जाएगी, तो तुम्हें लड़ने से ना रोका जाता। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करे। और लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफ़रू मिन्हुम अज़ाबन अलीमा, अगर मोमिन इनसे अलग हो गए होते तो इन अहले मक्का में से जो काफिर थे, हम इनको दर्दनाक सजा देते। अल्लाह अकबर। एक और एंगल अल्लाह ताला यहाँ हुदैबिया के एक मौके का बताते हैं, और वो क्या है कि पहली बात, हुमुल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला करे ये वही लोग हैं, याद दिलाया जा रहा है अल्लाह के नबी को कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, मुराद ये कि अल्लाह को नहीं माना। दूसरा इनका जुर्म क्या था, वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, तुम्हें मस्जिद हराम जाने से रोका। मुसलमान तो जाने के लिए जा रहे थे ना, वहां उमरे की बात थी, कोई वहां जंग का इरादा नहीं था। तो इनका दूसरा जुर्म क्या था कि आपको मस्जिद हराम जाने से इन्होंने रोक लिया। तीसरा इनका जुर्म क्या था, वल हज्या, और कुर्बानी का जानवर। हज्यून उस जानवर को कहते हैं जो हाजी या उमरा करने वाला, जिसको मोतमिर कहते हैं, वो अपने साथ लेके जाते हैं मक्का ताकि वहां हलाल करें। आज तो देखिए जहाजों में लोग जाते हैं या बहरी जहाजों में जाते हैं, तो अब अपने साथ बकरे तो नहीं लेके जा सकते ना, इसलिए वहां से लिए जाते हैं। और अब आज के दौर में पसंदीदा अमल भी ये है कि वहीं से लिए जाएं, हज तमत्तों में यही होता है कि कुर्बानी वहां से ली जाती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हज किया था, और इसी तरह एक उमरा जो अब आए थे, और इसके बाद जब दोबारा आएंगे अगले साल, तो आप लोग अपने साथ मदीना से लेके आते थे, इसको हज किरान कहते हैं कि इस कुर्बानी को साथ भी लेके आया जाता है। अब हुआ क्या कि मुसलमानों के साथ चले, मुसलमान तो थे, कुर्बानी के जानवर भी थे, तो जिस तरह इंसानों को अल्लाह के घर पहुंचने से रोकना एक जुर्म है, इसी तरह जानवरों को हरम में पहुंचने से रोकना ये भी एक जुर्म है। क्योंकि आप देखिए कि हर जानवर भी तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं होता ना, ये अल्लाह की शान होती है। कुछ बकरे जिनको आप ईद उल अदहा के मौके पर ज़िबह होता हुआ देखते हैं, तो उनके ऊपर रश्क भी तो आ रहा होता है ना कि आज अल्लाह के रास्ते में ज़िबह हो रहे। कटना तो हर बकरे ने, कोई किसी के वैसे ही कसाब के हाथों कट जाएगा, कोई किसी के अकीके के लिए कटेगा, लेकिन वो बकरे जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे रहे हैं, वो यकीनन बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि देखो ये तो जानवरों तक को रोक रहे हैं। और रिवायत में थे कि 70 ऊंट थे, यानी 70 ऊंट थे जो सहाबा किराम अपने साथ लेकर आए थे, इस नीयत से कि वहां जाके हम इनको अल्लाह के रास्ते में कटेंगे। लेकिन जब कुरैश ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोका, तो फिर इन्हीं ऊंटों को बजाय इसके कि इनको हरम में जाके काटा जाता, इसी हुदैबिया के मुकाम पे काटना पड़ा। तो जाहिर है कि ये उनके साथ एक किस्म की ज्यादती हुई, उसका तذکرہ अल्लाह ताला ने कर दिया कि देखो इन्होंने तो जानवरों को भी रोका। महिलुन हलाल होने की जगह, इससे मुराद वो कुर्बानगाह है जहां इनको ले जाकर ज़िबह किया जाता था। और ये मुकाम उमरा करने वाले के लिए मरवा पहाड़ी के पास, और हाजियों के लिए मीना था। और माकूफन का जो लफ्ज़ इधर आया है, आकफा से है, आइन काफा, इसी से लफ्ज़ एतकाफ है, एतकाफ जमकर इबादत करना, तो माकूफन हाल है, यानी ये जानवर इस इंतजार में रुके हुए थे कि मक्का में दाखिल हों ताकि इनको कुर्बान किया जाए। मतलब क्या है कि इन काफिरों ने तुम्हें भी मस्जिद हराम से रोका, और तुम्हारे साथ जो जानवर थे उनको भी रोका वहां पहुंचने से। अब यहाँ बात खत्म हुई। तीसरी बात शुरू होती है इस आयत की, क्या, वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउ मोमिनात लम तालमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरी इल्मिन। थोड़ी सी समझने की आयत है, इसका तर्जमा समझ नहीं आता जब तक तवज्जो ना करे, तो इसको एक स्ट्रेच में मैं पढ़ूंगी, फिर इसको गौर से देखिएगा। कहा, और अगर मक्का में कुछ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें न होती, जिन्हें तुम नहीं जानते, और अगर ये खतरा ना होता कि जंग की सूरत में तुम उनको मार दोगे या पामाल कर दोगे, फिर इनकी वजह से तुमको नादानिस्ता पशेमानी लाहक होगी तो तुम्हें लड़ने से ना रोका जाता। और रोका इसलिए गया कि लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते अपनी रहमत में दाखिल करें। अब हुआ क्या, इसमें एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो बज़ाहर तो जितने भी लोग थे ईमान वाले वो हिजरत करके चले गए। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं गए, हमेशा नहीं जाते। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, फिर आज़ादी मिली तो पाकिस्तान के नाम पे सब मुसलमान आ गए। इसके बावजूद कितने मुसलमान थे जो इंडिया में रह गए? क्यों रह गए? किसी के घर उधर थे, किसी को अपना बिजनेस नहीं छोड़ना था, किसी ने कहा वी आर हैप्पी नो प्रॉब्लम, वो जानबूझ के रह गए। फिर इसी तरह बाद में कुछ वहां बाद में भी मुसलमान हुए होंगे या कुछ ऐसा। बिल्कुल इसी तरह मक्का में भी कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि सारे मुसलमान जो थे वो हिजरत करके नहीं गए थे। कुछ रहे मक्का में लेकिन उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, एक्सपोज नहीं करते थे कि हम मुसलमान हैं, इसलिए अमन से रहते थे। और हकीकत है कि जब भी कोई दारुल हर्ब में रहेगा, यानी वो मुल्क जहां मुसलमानों के साथ जंग हो, तो फिर उसको अपना ईमान तो छुपाना पड़ता है और उसकी बाज़ दफ़ा कीमत भी देनी पड़ती है। बस उनको बाज़ दफ़ा हिंदुओं के तराने पढ़ने पड़ते हैं, बंदे मातरम का तराना पढ़ना पड़ता है जिसमें बाज़ शिरकिया लफ्ज़ भी हैं। इसी तरह किसी किसी मौके पे अपने आप को इस्लाम का खैर ख्वाह भी नहीं दिखाना होता, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन बहरहाल अब थे तो मुसलमान। अब कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शरई उजर था, यानी उनके पास कोई ऐसे जराए मौजूद नहीं थे कि वो हिजरत करके मदीना चले जाएं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ माजूर कर दिया। हैंडीकैप थे मीन कि ये कर ही नहीं सकते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं और मेरी माँ इन्हीं लोगों में से थे कि जंग की सूरत में, अब जाहरी बात है अगर कुफार जंग के लिए आते तो इनको भी साथ ही आना पड़ता, क्योंकि काफिरों को तो नहीं पता था कि ये मुसलमान हो चुके हैं। और जब मुसलमान हमला करते तो मुसलमानों को नहीं खबर थी कि ये काफिर है या मुसलमान है, तो उम्मीद थी इस बात की कि मुसलमान के हाथों से ये मुसलमान मारे जाते। ठीक है, सिनेरियो समझ आ गया ना कि इन थोड़े सारे मुसलमानों को बचाने के लिए अल्लाह ने कहा कि मैंने इसलिए तुम्हें मक्का में दाखिल होने और लड़ाई से रोका, वरना ये मत सोचो कि तुम 1400 थोड़े थे, तुमने भी उनको इंशाल्लाह मार लेना था। लेकिन खतरा क्या था कि वो थोड़े से लोग थे और बाद में फिर तुम्हें ताने मिलते इस बात के कि तुमने तो जंग में अपने मुसलमान साथियों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, यहाँ लफ्ज़ मअर्रतुन इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट ऐन रौरा है, इसके मानी ऐब के होते हैं। मुराद जहाँ वो बुराई और शर्मिंदगी जो काफिरों की तरफ से तुम्हें उठानी पड़ती इन लोगों के कत्ल की सूरत में, एक तो कत्ले खता की दियत देनी पड़ती और दूसरे ये ताना सुनना पड़ता कि तुम अपने ही मुसलमानों को मारते हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उसके लिए उनको दी, वरना अल्लाह ताला कहते कि इजाज़त दे दी जाती। यहाँ जो ये कहा ना कि अल्लाह ताला तुम्हें इजाज़त दे देता, किस बात की? लड़ने की, कि अगर बेखबरी में उनको ज़रर पहुंचता तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती। तो बेसिकली ये लौला का मखजूफ जवाब है, यानी अगर ये बात ना होती तो मक्का में दाखिल होने की और कुरैश मक्का से लड़ने की इजाज़त दे दी जाती, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत में रखता है। मुराद ये अहले मक्का को मोहलत दी गई कि अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, इन जंगों में और इन लड़ाइयों में मरने से पहले अगर तुम इस्लाम की तरफ आते हो तो आ जाओ। और आप देखिए कि यहाँ जंग ना होने का एक और फायदा भी क्या हुआ कि कबायली इलाकों में ये बात फैल गई कि मुसलमान अमन पसंद लोग हैं, कि हुदैबिया के मुकाम पे बैठ के वापस चले गए, लेकिन यानी उस वक्त ये लड़ाई के लिए नहीं आए, कोई जंगजू कौम नहीं है। और यही वो वक्त है कि ऐसे वक्त में फिर दो बहुत बड़े सहाबी जो थे वो इस्लाम कबूल कर चुके थे जो पहले मुसलमान नहीं थे, उनमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो थे। इस मौके पे मुसलमानों के इस रवैये को देखकर ये इस्लाम कबूल किया इन्होंने। इसी तरह अमर बिन आस जिन्होंने बाद में मिस्र को फतह किया, ये दोनों मुसलमानों के इस रवैये की वजह से मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी बात जो थी इसमें दूर रस कितनी ही बातें थी जो खैर की निकली। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफरू मिन्हुम अज़ाबन अलीमा, अगर मोमिन इनसे अलग हो गए होते, यानी कौन से मोमिन? वो जो थोड़े से मक्का में फंसे हुए थे, अगर ये बिलफर्ज मक्का में ना होते तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर अहले मक्का में से जो काफिर थे फिर हम उनको खूब सजा देते। यानी इतने थोड़े से लोगों के मक्का में मौजूद होने ने वहां होने वाली लड़ाई को रोक दिया। इससे पता चलता ना कि ईमान वाला जहां भी होगा वहां खैर पहुंचेगी। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये अलग होते तज़य्यलु का मानी यहाँ क्या तमय्यजु यानी मुमताज हो चुके होते, इनकी रिहाइश अलग होती तो फिर तुम्हें इजाजत मिल जानी थी और फिर इनको अजाब अलीम होता। और अजाब अलीम से मुराद यहाँ कैद, कत्ल और कहर और गलबा है, उनको कैदी बनाया जाता। तो खुलासा सारी बात का ये है कि अल्लाह ताला एक ईमान वाले की भी जान की वजह से बाज दफा पूरी पूरी कौमों को जीने की मोहलत दे देते हैं। फिर आगे फरमा इस जाललजीन कफरू फी खुलूबिहिमुल हमीयता हमीयतल जाहिलिया हमीयतल जाहिलियति फ़ानज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मुमिनीन वअल्ज़महुम कलिमतत तक्वा वकानू अहक्क बिहा व अहलहा वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। जब कुफारे मक्का ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अपने दिलों में जमाने जाहिलियत की असबियत की ठान ली तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और इन्हें तकवा की बात का पाबंद रखा और वही इसके ज्यादा हकदार और इसके अहल थे और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाला है। इस आयत में फिर दो तीन बातें। पहली बात देखिएगा इस जाला, इस के अंदर उस्क रूह होता है, याद करो, यानी इसका ज़र्फ़ या तो लाज़ब ना है या फिर यहाँ वस्क रू महजूफ है, यानी उस वक्त को याद करो जब इन काफिरों ने क्या अल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में क्या थी हमीयता हमीया। हमीया का लफ्ज़ जो है ना हा मीम या से है, गर्मी को कहते हैं हमयुन, हम्मा बुखार को कहते हैं, टेम्परेचर तेज हो जाता है ना जो, और हम्मा गर्म हुआ कहते हैं। मुराद है कुव्वते गजब जब जोश में आकर भर जाए, गुस्सा होता है ना जैसे कहते हैं जी खून खौल रहा है, हमारे यहाँ भी तो यही मारूफ है ना कि फलां का खून खौल उठा गुस्से की वजह से, तो ऐसी खुददारी जो तकब्बुर की वजह से हो, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना नाक कटने का डर, अना ढीठपन तकब्बुर, जान जाती है तो जाए लेकिन शान ना जाए। अल्लाह तआला कह रहे हैं कि इन मक्का वालों ने मुसलमानों को हरम में दाखिल होने को अपनी इज्जत का मसला बना लिया था कि जी हमने इनको दाखिल नहीं होने देना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना मुखालफत बराए मुखालफत, भाई अल्लाह के बंदो तुम्हारा क्या जाता है, उन्होंने उमरा करके वापस आ जाना था, उन्होंने यकीन भी दिला दिया कि हथियार नहीं है जंग नहीं है, तुम 1400 के साथ एक एक अपना अपना साथी कर दो, 1400 लाख साथ जाओ उमरा करके आ जाए, क्या बड़ी बात थी, अब चले जाए अगले साल आएंगे, इतनी क्या मुश्किल है। अल्लाह ताला कह रहे इसकी असल वजह क्या थी कि फी खुलूबिहिमुल हमीया हमीयतल जाहिलिया के बास लोग अपने दिल में ऐसी जाहिलियत वाली आदत आर और गुरूर वाली बातें करने लगते हैं कि वो इसको कसम मतलब खा लेता है ना जैसे बंदा कि मैं ये काम नहीं करने दूंगा, और बास कहते हैं कि उन्होंने वाकई कसम खा ली थी, उज्जा और लात के नाम की कसमें खाई थी कि हम मुसलमानों को यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि इन्होंने हमारे बापों और बेटों को कत्ल किया था बदर के मैदान में, अपनी इज्जत और वक्कार का मसला बनाया, तो लिहाजा ऐसी हमायत जो जाहिलियत की बुनियाद पे किसी के लिए की जाए, चाहे खानदान के लिए की जाए, चाहे बिरादरी के लिए की जाए, चाहे रस्म और रिवाज के लिए किया जाए, इसको इस्लाम हमीयतुल जाहिलिया कहता है। आज के दौर में भी देखिए कि लोगों में ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं, उनको लाख पता होता है कि ये बात हमारे खानदान में है, बुरी है, पसंदीदा नहीं है, आज अच्छी भी नहीं, पैसा भी उठता है, फिर भी वही रस्म करेंगे, क्या करें जी खानदान की बात, बिरादरी में नाक कट जाएगा, लोग बातें करेंगे, नहीं भी दिल चाहता पैसे जाया करने को, बेकार जगहों में माल लगाने को, फिर भी कहते नहीं लोग बातें करेंगे, तुमने ये रस्म नहीं की, तुमने ये तौर तरीका इख्तियार नहीं किया। तो अल्लाह तआला कहते हैं कि उस वक्त इनका भी कुछ यही हाल हो चुका था कि ये इस आर में आ चुके थे कि लो देखो लोग हमें बाद में बातें करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कुछ मौकों पे बातों का डर है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों के डर से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हुई हैं लोगों की बातों के डर से, और वो बंदा बहुत बहादुर है और वो दुनिया में वाकई सुख का सांस लेता है जिसको लोगों की बातों की फिक्र नहीं होती, न क्योंकि उसको पता है कि करते हैं तो करते रहे, फिर मुझे क्या, मुझे बातों से क्या होगा। देखिए अगर आपको कोई बातें करता रहे उससे आपके सर में दर्द होगा, आप ना सुने ना सोचें, आपके कान में दर्द होगा, आपके बाजू में दर्द होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, तो ये जो बातों का खौफ होता है ना, ये बाज दफा इंसान से बहुत बुरे बुरे काम करवाता है। और दूसरा उनको ये खौफ था कि लोग कहेंगे लो जी ये मुसलमानों से दब गए हैं, इन्होंने हिम्मत हार दी और मुसलमान आगे आगे। आज भी देखिए इस तरह की जहालत की बात होती है। दिल से किसी चीज को मान चुके होते हैं लेकिन जुबान से उसका इजहार नहीं करते कि कहीं लोग हमारे लिए इस चीज को आर न बना ले। कहा यही वजह थी, लेकिन फनजल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों में सकीनत डाल दी, इत्मीनान दे दिया। पीछे भी बात आ गई इत्मीनान की और सकीनत की, यहां भी बात आ गई। वालजमहुम कलिमत तकवा, और उनको तकवा की बात का पाबंद कर दिया। ये जो अलजमा है ना, इसी से लफ्ज इल्जाम है, लजीमा से है, चिपक जाना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना। इल्जाम भी तो चिपक ही जाता है ना इंसान के साथ। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनके दिल में तकवा की बात चिपका दी। अब यहाँ तकवा की बात क्या थी? वो ये थी कि मुसलमान तंगी तुरशी और जोश और गजब, हर किस्म के हालात में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के पाबंद बने रहे। और ये बात बहुत थोड़े लोगों को नसीब होती है। जब कभी कोई एक्सट्रीम रवैया आता है ना हमारे पास, तो वो रवैये जो होते हैं ना, हमारे अंदर से इत्मीनान को खत्म कर देते हैं। आम हालात में हम बहुत अच्छे होते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती, लेकिन जो ही कोई ऐसा मसला आता है ना जिसमें हमारी अना को जरूरत पड़ती है, वो जैसे कहते हैं ना दुखती हुई रग को कुछ छेड़ दे, उस वक्त फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि देखो ईमान वालों को कितना सुकून था इस बात में। कितने ही मौके आए ऐसे कि जिस वक्त मक्का वालों ने छोटी छोटी बातों को आर बना लिया। आपको पता है कि एक ऐसा भी मौका आया था जब सुलह हुदैबिया लिखी जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब लिखने का हुक्म हुआ, हजरत अली ने ये मुआहदा लिखा था, तो आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मुसलमानों का रिचुअल था, इसी पे झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगे ये क्या बात है भाई, ये अर्रहमान अर्रहीम और अल्लाह, ये तो तीन खुदा हो गए, हमें तो तुम कहते हो कि एक को मानो, हम नहीं मानेंगे, पहले तुम इसको सिर्फ अल्लाह के नाम पे करो। अब ये झगड़ा था ना, एतराज बरा एतराज था। अल्लाह के नबी ने फिर भी गुस्सा नहीं किया, आपने कहा अच्छा अली कोई बात नहीं, इसकी जगह लिख दो बिस्मिक अल्लाहुम्मा, सात नाम तेरे ए अल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत तरीका सिखाया ना निभा करने का, समझौता करने का। और कामयाब इंसान वही होता है जो हालात में अटकने की बजाय, बहस करने की बजाय, अपने आप को नुमाया करने के बजाय, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर ले कि जिसको अवॉइड की पॉलिसी कहते हैं, अवॉइडेंस कर ले, इग्नोर कर दें, किल विद काइंडनेस, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि इग्नोर ग्रेसफुली, बिल्कुल केयर ना करें। वो हर बात पे हमीयत पे आए हुए थे, जाहिलियत की बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के नबी कितने प्यारे तरीके से ये बातें कर रहे थे। फिर अगला झगड़ा शुरू हो गया। जब मुआहदे की बात हुई तो वहां लिखा हुआ था कि मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है उनकी तरफ से, एला कुरैश, कुरैश के नाम या आयमा कुरैश, फिर झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने। कहने के ये मोहम्मद को रसूलुल्लाह ही तो हम मानते नहीं है, ये मान लिया तो फिर हमारा आपका तो झगड़ा ही खत्म हो गया, इस लफ्ज रसूलुल्लाह को हटाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने कहा अली इसको हटा दो, तुम कर दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहा अल्लाह के नबी मैं तो नहीं कर सकता, आपके नाम के आगे से रसूलुल्लाह का लफ्ज मैं क्यों हटाऊं? कहा अच्छा मुझे बताओ किधर लिखा हुआ है, क्योंकि आप खुद पढ़ भी नहीं सकते थे, मुझे बताओ कहाँ लफ्ज है इस रसूल और अल्लाह का, रसूलुल्लाह। और जब उन्होंने बताया तो आपने अपने हाथ मुबारक से उसको मिटाया। सोचिए जरा ये क्या बताती हैं बातें, हम खानदानी बातों में अपने अपने सगे बहन भाइयों के अंदर हम खून के प्यासे हो जाते हैं। हम कहते हैं हाँ हमें तुमने समझा क्या, क्या हम नहीं कुछ कर सकते, हम ये कर देंगे, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, अंदर कुछ भी ना हो, दिल डूब भी रहा हो तो धमकियां देने को तैयार होते हैं, करना कराना कुछ भी नहीं होता, लेकिन करते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि मुसलमानों ने इतने प्यारे तरीके से इस मौके को रखा और वो सारी शरायत कबूल कर ली जो कि उस वक्त बड़ी खराब लग रही थी। अल्लाह ताला कहते हैं इसी के बदले मैंने उनके दिल के अंदर कलमा तकवा का, तकवा की बात रखी। वो तकवा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबर वक्कार। और ऐसे वक्त में फिर मुसलमान जो थे वो अल्लाह की रहमत से एक बहुत बड़ी जंग से बचे। अब इस पूरे किस्से के ऊपर आखिरी दफा अल्लाह ताला की तरफ से एक तबसरा कह ले या कमेंट कि लकद सदक अल्लाह रसूलहु रुया बिल हक, बिलाशुबा अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया जो एक हकीकत था। क्या? لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا تھا، جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے، اور اس وقت تم سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح یعنی خیبر کی فتح تمہیں عطا فرمائی. اس آیت میں اصل میں جہاں سے واقعہ شروع ہوا تھا اس کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس پوری سورت کے اندر خواب کی بہت بات ہے. لقد صدق اللہ، جب اللہ تعالی نے سچ کر دیا کیا؟ رسول کا خواب. نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں نا، یہ وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی اس میں سے ایک کثیر حصہ خوابوں کی صورت میں بھی آتا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جو دکھائے گئے، تو یہ بھی ایک وحی کی صورت تھی. پھر اسی طرح حضرت یوسف کا خواب جو بعد میں سچا ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو بھی سچے خواب دکھا سکتا ہے، جس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوا. انشاءاللہ آخری آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو خواب آیا تھا. تو بہرحال یہاں وہ خواب جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں گئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، اسی بات کا تذکرہ ہے جس کی بنیاد پہ حدیبیہ کا سفر جو تھا وہ شروع ہوا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، البتہ ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ تم مسجد حرام میں جاؤ گے، لیکن یہ تو راستے میں روک لیے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے بغیر عمرہ کیے، تو بس صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کریں گے، آپ نے تو وہ خواب دیکھا تھا ہم پلٹ آئے، تو آپ نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اللہ کرے گا اس کو سچا. اور پھر ہوا، کیسے ہوا؟ ایک سال کے بعد. اسی حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی کہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں لوگ، تو اس وقت پھر مسلمان آئے اور پھر عمرہ قضا جو تھا اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں. سن 7 ہجری میں یہ ہوا تھا. 3 دن مسلمان مکہ میں رہے، مکہ کے جو لوکل لوگ تھے وہ پہاڑوں میں چلے گئے، خوف تھا ان کے دلوں میں، ڈرے ہوئے تھے اندر سے کہ پتہ نہیں مسلمان کیا کریں. اور اس وقت واقعی مسلمانوں کے پاس بہت اچھا موقع تھا، مکہ شہر خالی تھا، آپ تھوڑا سا دھوکہ دیتے، غداری کرتے، آپ مکہ پہ حملہ کر سکتے تھے، قبضہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور بس وہاں جا کے عمرہ کیا. خلقین کا لفظ ہوتا ہے خلق، بالوں کو کٹوا دینا جیسے ہوتا ہے، اور مقصرین ہوتا ہے کاٹنا. عورتیں عموماً بالوں کے نیچے سے ٹرمنگ کرتی ہیں، مقصرین بیسیکلی ٹرمرز ہیں، ٹرم کرنے والے. پسندیدہ عمل یہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے پورے بال صاف کروا دیں، کیونکہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال منڈوانے والوں کو 3 دفعہ دعا دی تھی، اور جب بہت دفعہ لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے کتروانے والوں کو آخری دفعہ ان کے لیے بھی دعا کی تھی. تو پسندیدہ عمل یہی ہے، اس کا اس میں تذکرہ ہے کہ تم ضرور اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور بالوں کو کترواؤ گے، اور لا تخافونا، کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اس سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعلم ما لم تعلمو، اللہ کو پہلے سے پتہ جو تمہیں نہیں پتہ. کیا مطلب؟ کہ حدیبیہ کے اس سفر کے بعد تمہیں خیبر کی فتح ملے گی، اور پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوگا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، قریب کی فتوحات، یعنی وہی بات ہے کہ من تواد اللہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دے گا. اور یہ اصول ساری زندگی کام آتا ہے انسان کو، کہ جو وقت پہ کسی کی سہ جاتا ہے نا، زبان سی لیتا ہے، منہ سے نہیں بولتا، وہی بندہ جس نے ابھی غصے میں اس کو ناحق بھی باتیں سنائی ہیں نا، بعد میں وہ اس کی تعریف کرے گا. غصہ جو ہوتا ہے نا وہ آگ ہوتا ہے. بعض دفعہ شوہر ہے، بیوی ہیں، اچھا بھی موڈ ہوتا ہے، اچھے مزاج کے بھی ہوتے ہیں، غصے میں آ کے شوہر کوئی بات کہہ دیتے ہیں. اب اگر بیوی آگے سے برابری کرے، اچھا مجھے کہا، تم نے مجھے سمجھا کیا، اور بولے گی اور سنے گی، وہ بھی بولے گا، یہ بھی بولے گی، خاموش رہے، چپ، صبر، ان اللہ مع الصابرین. آپ خاموشی سے پی جائیں گے थोड़ा वक्त नहीं गुजरेगा वो खुद सॉरी कर देगा कि वाकई मेरी ज्यादती थी, और देखो तुम आगे से कुछ नहीं बोली और मैंने किया, अल्लाह मुझे माफ करे। तो इनशाला आप देखेंगे कि ऐसे रवैये वाले लोग फिर बहुत कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, और अगर इख्तलाफात के मौके पे जिद लगा के बैठ जाएं तो आप समझें कि जीत के भी हार जाएंगे। और बाज़ लोग हार के भी जीत जाते हैं जब वो अपने किरदार को अच्छा पेश करते हैं, और नेकी का एक अजर और खुशी मिलना ये सब कुछ भी तो होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज्यादा देर नहीं गुजरेगी ये सब कुछ होगा और तुम इसको करके रहोगे, और मुसलमानों ने इस ख्वाब को वाकई फिर पूरा होते हुए देखा। अब यहाँ छोटी सी बात है, जो बाद में एक उमरा हुआ था इसको उमरतुल कजा क्यों कहते हैं? बस लोगों ने यहाँ एक छोटा सा मसला अखज किया, और वो क्या है कि एक दफा जब हज या उमरे की आप नियत कर ले, हज तो एक अलग चीज है, उमरा तो नफिल है ना, तो कहते हैं अगर उमरे उमरा वैसे तो फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप नियत कर लेते हैं और किसी वजह से रुक गए, आपको जद्दा एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, आपको अपने मुल्क लिया गया, तो अब ये उमरा फर्ज हो जाता है। और दलील देते हैं कि देखें अल्लाह के नबी सल्लम ने भी तो उमरा कजा किया था क्योंकि आपने नियत की हुई थी और आप नहीं जा सके, हालांकि ये दुरुस्त मसला नहीं है, ये मुगालता है। अल्लाह के नबी का और साथियों का अगले साल उमरा जो करना था वो उमरा कजा इस वजह से नहीं था कि आपने नियत की थी और नहीं कर सके थे, नहीं, वो इसलिए था कि उसकी शर्त पूरी करने के लिए, कि उसमें था कि अगले साल कर लेना, तो फिर आपने कर लिया। तो सही मसला क्या है कि अगर कोई इंसान कोई भी नफिल की नियत करे, मसा आप नफिल की नियत कर रहे हैं, अब आपने नियत की, किसी वजह से आपको नफिल तोड़ने पड़े, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है, आपको जान के ना तोड़ें कि खेल बना लें, रोजा रखा नफिल रोजा था आपका, बाद में आपका दिल चाह के नहीं आज कोई और प्रोग्राम है कुछ है खोल लूं, तोड़ लिया, कोई गुनाह नहीं, कोई कफारा नहीं। जो लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी ने भी तो उमरा किया था दोबारा कजा पे, फिर वो ये कहते हैं कि जब भी किसी नफिल की नियत कर ली जाए ना फिर करना पड़ता है। दिन में आप देखिए इंसान कई नियतें करता है, अच्छा फुला आएगा उसको इतने पैसे दे दूंगी, अच्छा इतना सदका कर दूंगी, फिर भूल जाते हैं, वो नहीं आता उसकी जगह कोई और आ जाता है उसको दे देते हैं, अपने पैसे किसी एक नियत के रखे होते हैं, आपके सामने कोई बड़ी दूसरी जरूरत आ जाती है आप उसको दे दे, दिल में तो कई ख्याल है। हाँ जब तक आप किसी से वादा ना कर लें, आप किसी को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगी, अब आपको देना चाहिए क्योंकि ये वादा है, लेकिन बाकी रह गई बात कि जैसे फर्ज की कजा दी जाती है इसकी नफिल की कजा दी जाए, तो फिर फर्ज और नफिल में फर्क क्या रहा? कोई अपने दिल की तसल्ली के लिए करना चाहे तो कर ले, जैसे हदीस में आता है ना कि जो रात को नफिल पढ़ते हैं जैसे तहज्जुद की रख पढ़ते हैं, किसी वजह से वो नहीं पढ़ सका तो अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह वैसे ही अजर देगा, लेकिन अगर वो अपने दिल की तसल्ली के लिए पढ़ना चाहता है तो सूरज निकलने के बाद सुबह पढ़ ले। बाज़ लोगों को वो एक भरम भी लग जाता है ना, हाय आज मेरी तहज्जुद छूट गई, हाय छूट गई, कहा तुम पढ़ लो तुम्हारी मर्जी है। बस जब हम नफिलों की सूरत में भी इतने ज्यादा तशद्दुद बरतने वाले हो जाते हैं, कैसे लगता है कि जैसे उस पे भी फिर लोग फतवे देते और फिर इख्तलाफात और छोटी छोटी बातों को आगे लेके जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि देखो मैं जिस बात को जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और इस तरीके से ये मामला सारा पूरा हुआ। एक रिवायत सुना देती हूँ सही बुखारी में से, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कजा उस पर लाजिम है जो औरत से सोहबत करके हज तोड़े, यानी हज के लिए गया हुआ था और उन दिनों में उसने औरत से सोहबत कर ली, और जिसे कोई उजर लाहक हो जाए, दुश्मन रोक दे या कुछ बीमारी वगैरह को उजर हो तो अपना अहराम खोल दे और कजा ना दे, और अगर इसके साथ कुर्बानी हो और इसे हरम में ना भेज सके तो वहीं ज़िबा कर दे, और अगर हरम तक भेज सकता हो तो जब तक कुर्बानी वहां ना पहुंच जाए वो अहराम नहीं खोल सकता। और अब इमाम मालिक वगैरह ने कहा जब वो रुक जाए तो जहां कहीं चाहे वहीं कुर्बानी ज़िबह कर दे और सर मुंडा ले, और इस पर कज़ा लाजिम नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब ने हुदैबिया में कुर्बानियां ज़िबह की और सर मुंडाए इससे पहले कि वो तवाफ़ करें और कुर्बानी बैतुल्ला को पहुंचे। फिर किसी रिवायत में इसका जिक्र नहीं कि आपने इनमें से किसी को कज़ा का हुक्म दिया हो या दोहराने को कहा हो, और हुदैबिया हरम की हद से बाहर है। सही बुखारी की ये रिवायत है। तो बहरहाल बात वाजे है कि अल्लाह ताला जानते हैं, और ये भी जो बात ना कि फालिमा मालम तालमु में एक ये भी मानी दिया गया कि तुम ये नहीं जानते थे कि मुसलमान उमरा इस साल करेंगे या अगले साल करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि ये अब अगले साल होगा, और आप देखिए कि सिला कितना अच्छा देते हैं कि बाद में फिर मुसलमानों को इतना कुछ मिला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी।